नमस्कार बच्चों, मैं मंजू गुप्ता आज आपके साथ परछाई चैनल में एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ बिहारी के दोहे कक्षा 10वीं के लिए। कृपया ध्यान से सुने। बिहारी, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि बिहारी अर्थात भगवान कृष्ण है। वृंदावन के रसिया को कौन भूल सकता है। उन्हीं के नाम पर आधारित इनका नाम भी बिहारी रखा गया है। इनके बारे में कहा जाता है, मांझी पोंछी चमकाई युत प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख रची सत्सई एक। अर्थात मांझ कर पोंछ कर चमका कर अनेक प्रयास करने के बाद एक ऐसी प्रतिभा सामने आई है, लंबा जीवन अनेक सुख वाले बिहारी ने एक ग्रंथ बिहारी सत्सई की रचना की। सत्सई अर्थात जिसमें 700 दोहे हों। यदि इसके अंदर हम समास की दृष्टि से देखें तो इसमें हमें द्विगु समास भी दिखाई देता है, 700 दोहों का समूह। बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है, सत्सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अच्छा अर्थात सत्सई के दोहे ऐसे हैं जैसे किसी मधुमक्खी का डंक हो। देखने में जितने छोटे लगते हैं उनका घाव उतना गहरा उतना चोटीला होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इनका नाम बिहारी अर्थात कृष्ण के नाम पर ही आधारित है। कृष्ण ब्रज भाषा से संबंधित थे, ब्रज के ही थे। बिहारी की भाषा भी ब्रज की है, इसलिए इनकी भाषा को ब्रज भाषा कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म भी ब्रज में ही हुआ था। इनके दोहे श्रृंगार रस से संबंधित हैं। श्रृंगार रस में भक्ति भी है, नीति भी है, प्रेम भी है और श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का वर्णन भी है। रीतिकाल के मुख्य कवियों में से एक कवि है बिहारी। तो चलिए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चों इनके अर्थ को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पी तुपट श्याम सलोने गात, मनो नील मनि सैल पर आतप परियो प्रभात। अर्थ लिख लीजिए पहले। सोहत अच्छा लगना, ओढ़े ओढ़कर, पीतु पीला, पटु कपड़ा, गात शरीर, नीलमणि नीलमणि पर्वत, आतपु धूप या सूर्य के लिए भी कह सकते हैं, बाल सूर्य जो अभी अभी उगा हो यानी उषा काल का समय, प्रभात सुबह, ठीक है। इस दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का सांवला शरीर है और उस सांवले शरीर पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर अभी अभी बाल सूर्य उदय हुआ हो। उनकी इस सुंदरता का वर्णन किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ उसका अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए बिहारी ने कहा है कि भगवान कृष्ण का सांवला शरीर है और इस सांवले शरीर पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। पीले वस्त्र धारण करने के कारण वे ऐसा लगता है मानो अभी अभी नीलमणि पर्वत पर बाल सूर्य उदय हुआ हो और उसकी किरणें उस पर्वत पर बिखर गई हों। उनकी सुंदरता का वर्णन इस दोहे में किया गया है। बच्चों यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात में आपको उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिखेगा, जहाँ पर आपको मनो मानो मानहू जनु जानो जानहू जैसे शब्द मिलेंगे वहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे दोहे पर चलते हैं। हमारा दूसरा दोहा है, कहलाने एकत बसत अही मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। सबसे पहले हम इनके अर्थ लिख लेते हैं। अही सांप, एकत इकट्ठे, बसत रहते हैं, मृग हिरण, तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, दीरग दाग भयंकर गर्मी, निदाग ग्रीष्म ऋतु। ये सभी दोहे उनकी भी सच्चाई से लिए गए हैं। इस दोहे में ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता का वर्णन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि सारे जानवर, कौन कौन से जानवर, मोर सांप हिरण और शेर, हिरण शेर का शिकार होता है, शेर हिरण को खा जाता है, सांप मोर को खा जाता है, सॉरी मोर सांप को खा जाता है। कवि कहते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी के कारण ये सारे के सारे एक जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि भयंकर गर्मी के कारण वन भी तपस्या भूमि बन गया है, तपोवन बन गया है। ऐसे लगता है जैसे वो तप भूमि है और ये चारों ने अपने अपने व्यवहार यानी हिंसक व्यवहार को छोड़कर अहिंसक हो गए हैं। इतनी भयंकर गर्मी के कारण इनके शरीर में इतना आलस्य भर गया है कि अपने सामने शिकार को पड़े हुए देखकर भी उस पर झपट्टा नहीं मार रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने अपने द्वेष, अपनी ईर्ष्या, अपनी हिंसा सब त्याग दिया है और सब तपस्वी बन गए हैं। ठीक है, आगे के दो दोहे अगले एपिसोड में करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं मंजू गुप्ता परछाई चैनल में आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बिहारी के कुछ दोहे कक्षा 10वीं के लिए। उम्मीद करती हूँ पहले दोहे भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी हम आगे के दोहों पर ध्यान देते हैं, चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने बात की थी भयंकर गर्मी की और कृष्ण की सुंदरता की। आज हम बात करते हैं गोपियों की अटखेलियों की। अटखेलियाँ चुहुलबाजी, भगवान के साथ छेड़छाड़, है ना? तो शुरू करते हैं। बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बहुनू हसे दैन कहे नटी जाए। कितना सुंदर वर्णन किया गया है बिहारी ने, इतने सुंदर वर्णन, इतनी सुंदर भाषा को लेकर आनंद ही आनंद बिखेर दिया है। पहले सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि आपको अर्थ समझने में कोई कठिनाई ना हो। बतरस अर्थात बातचीत का आनंद, बतरस बत यानी बात, रस यानी आनंद, तो पूरा अर्थ बना बातचीत का आनंद। लाल श्री कृष्ण के लिए, जिसे हम प्यार करते हैं, माँ को भी देखा होगा घर में बोलती है अरे मेरे लाल मेरे प्यारे, तो लाल अर्थात श्री कृष्ण। मुरली आपको पता ही है बांसुरी। लुकाई एक देहाती शब्द है छुपाना। सोहो शपथ कसम खाना। बहनू बहों से यानी आईब्रोज जिसको आप बोलते हैं। नटी जाई मना करना। ठीक है, अब हम इनके अर्थ देखते हैं। ये दोहा भी बिहारी सत्सई से लिया गया है। मैं अगर ये कहूँ कि बिहार भी शब्द को हटा दूँ तो बिहारी सत्सई से ही लिया गया है, क्योंकि इनकी एकमात्र रचना सत्सई ही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सत्सई अर्थात 700 दोहों का समूह, 700 दोहे हैं उसमें। यदि हम समास की दृष्टि से देखें तो इसमें आपको द्विगु समास दिखाई देता है और परीक्षा की दृष्टि से भी मूल्यवान है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। दोहा करते हैं। बत रस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोहो करे बहुनू हसे दैन कहे नटी जाए। भगवान कृष्ण के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। भगवान कृष्ण को अपनी बांसुरी चुराए जाने का दुख है। बार बार गोपियों से पूछ रहे हैं, क्योंकि जब गोपियों को तंग करते हैं तो गोपियां शिकायत करने जाती हैं माँ यशोदा के पास। और अभी गोपियों ने भगवान कृष्ण की बांसुरी छुपा ली है, क्योंकि वो भी तो चाहती हैं उनसे बात करना। तो भगवान कृष्ण की बांसुरी छुपा ली है, और छुपाने के पीछे केवल एक ही कारण है, भगवान से बात करना। क्योंकि भगवान कृष्ण को अपनी बांसुरी बहुत प्यारी है और वो हर समय अपने होठों के साथ उसे लगाए रखते हैं, इसलिए गोपियों ने उसे अपनी सौतन मान लिया है। उनका मानना है कि जब तक ये बांसुरी इनके होठों से लगी रहेगी, भगवान कृष्ण हमसे बात नहीं करेंगे। इसलिए बातों का रस प्राप्त करने के लिए उन्होंने उनकी बांसुरी ही छिपा ली है। आपने कहावत भी सुनी होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वो कहावत यहीं से आई है। तो जब बांसुरी ही नहीं रहेगी तो भगवान कृष्ण बजाएंगे किसे? फिर तो मजबूरन हमसे बात करेंगे ही। पर भगवान कृष्ण तो भगवान है ना, उन्हें पता है कि गोपियों ने छुपाई है, पर फिर भी अपनी लीलाओं को दिखाते हुए गोपियों से कहते हैं, अरे दे दो ना मेरी बांसुरी, तुम्हीं ने छुपाई है, अरे दे दो। गोपियां कसम खा रही हैं भगवान कृष्ण की, अरे ना ना, हमने नहीं छुपाई तुम्हारी बांसुरी ना। और एक दूसरे को इशारों में, आंख के इशारों में बौहें मटका मटका के एक दूसरे को कह रही हैं कि हाँ मत कर देना, नहीं तो ये बात नहीं करेंगे। किसी को भी बताने से मना कर रही हैं। और भगवान, और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण की कसम भी खा रही हैं कि नहीं नहीं हमने तुम्हारी बांसुरी नहीं छुपाई। और भगवान कृष्ण भी मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछ रहे हैं, अरे दे दो ना मेरी बांसुरी। तो कितना सुंदर वर्णन किया है उन दोनों के बीच में जो अटखेलियाँ चल रही हैं। इतना सुंदर वर्णन शायद बिहारी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। अगले दोहे में श्रृंगार रस का वर्णन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रीतिकाल के प्रबुद्ध कवि माने जाते हैं ये। और रीतिकाल के इन प्रबुद्ध कवियों में मुख्य बात होती है कि ये श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं, और श्रृंगार रस का भी संयोग और वियोग दोनों पक्ष। यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैन नहीं सोवत। दोहे को करने से पहले इनके अर्थ देख लेते हैं। कहत, कहना या बात करना। नटत, इनकार करना या मना करना। रीझत, मोहित हो जाना। खीजत, बनावटी गुस्सा, कभी कभी मम्मी भी करती है घर में। मिलत, मिलना। खिलत, खुश हो जाना। लजियात, शर्माना। भौन, भवन। नैनहु, नेत्रों से। बच्चों, रीतिकाल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि बिना अलंकारों के इनका काम नहीं चलता। भर के अलंकार हैं। यदि यहाँ पर भी आप ध्यान से देखें तो कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, त वर्ण की आखिरी, जो आखिरी त वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। ध्यान दीजिएगा, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, आखिरी वर्ण यानी जो आखिरी वर्ण त दिखाई दे रहा है, त वर्ण जो से दो से ज़्यादा बार आपको दिखाई दे रहा है, जब दो या दो से अधिक बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, या तो वो पहला हो या आखिरी हो, तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, बिहारी कवि के सतसई से लिया गया यह दोहा जो श्रृंगार रस के संयोग पक्ष को दिखाता है, इसमें अगर हम थोड़ा सरल तरीके से इसको देखें तो एक नायक और नायिका है। हम थोड़ा सा इसको थोड़ा नाटकीय रूप से देखते हैं। एक नायक और नायिका हैं, विवाह मंडप में बैठे हैं। अब पुरानी परंपरा है कि नायक और नायिका एक दूसरे से बात तो कर नहीं सकते, आज का ज़माना तो है नहीं, है ना, कि पहले रिलेशनशिप होगी फिर शादी होगी। ये उस समय की बात है जब बिहारी था, यानी आज से कई साल पहले। तो यहाँ पर नायक और नायिका एक विवाह मंडप में बैठे हैं, एक दूसरे के सामने हैं। बात देखिए कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हैं और आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं, है ना। कहते नटत, लड़का कुछ कहता है, यानी नायक नायिका को आंख के इशारे से ही कुछ कह देता है और लड़की हल्की सी गर्दन हिला देती है, मना कर देती है, नटत मना कर देती है। उसकी इस अदा के ऊपर लड़का रीझ जाता है, यानी नायक रीझ जाता है, खुश हो जाता है, मोहित हो जाता है उसके ऊपर। उसे अच्छा लगता है कि हाँ नायिका ऐसा रिएक्शन दे रही है, उसे इस तरह के भाव की उम्मीद नहीं थी शायद। जब वो खुश हो जाता है तो लड़की हल्का सा ड्रामा करती है, गुस्सा होने का नाटक कर रही है कि ये क्या बात कर रहे हो भाई। ऐसे करते करते दोनों की नज़र मिल जाती है, दोनों की नज़र मिलती है और दोनों खुश हो जाते हैं। और जैसे ही दोनों खिलत खिलत यानी खुश होना, दोनों जैसे ही खुश होते हैं दोनों आपस में शर्मा भी जाते हैं, लजियात दोनों आपस में शर्मा भी जाते हैं। तो इतना सुंदर कम शब्दों में वर्णन केवल बिहारी कर सकता है। कहता है कि भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में यानी पूरा भवन यानी समाज के सारे लोग विवाह में इकट्ठे होते हैं, मालूम है ना आपको, वर पक्ष और वधु पक्ष सारा समाज इकट्ठा है और उनके बीच में ये दोनों आंखों के इशारों से बात कर रहे हैं और किसी को नहीं पता, पूरा रोमांस हो गया, ये सोच लो चलती है कि खंडाला भी हो गया इनका, पर फिर भी इतना सुंदर वर्णन और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अगले दोहे में चलते हैं। अगले दोहे में भयंकर गर्मी का वर्णन किया गया है। बिहारी सतसई के सतसई रचना से ही ये दोहा हो रहा है हमारे पास। बैठी रही अति सघन बन बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाह चाहती छाह। भयंकर गर्मी का वर्णन किया गया, भयंकर, इससे पहले भी हमने एक दोहा पढ़ा था जिसमें भयंकर गर्मी का वर्णन किया गया था। यहाँ पर भी एक और दोहा हमारे पास आया है जिसके अंदर जेठ की दोपहरी, आपको पता होगा कि जो गर्मी होती है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, उसमें भी अलग अलग हिस्से होते हैं, तो जेठ की दोपहर जो बोली जाती है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं। सघन, घना, बन, जंगल, पैठी, घुसना, पैठी मतलब जब कहीं जबरदस्ती हम कहीं घुस जाते हैं ना, उसके लिए आता है ये शब्द, पैठ जाना। सदन तन, भवन में, जेठ, जून का महीना, छाहो, छाया भी, है ना, जेठ यानी जून का महीना। आप देखते हो आपकी गर्मियों की छुट्टियां जून में पड़ती है, वो इसीलिए ताकि बच्चे गर्मी से बच सकें, शरीर को जला देने वाली गर्मी होती है इसमें। ठीक है, कवि कहता है कि जून का महीना है, भयंकर गर्मी पड़ रही है और इस भयंकर गर्मी के अंदर जो छाया है, ध्यान से सुनना, जेठ का महीना है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, जो छाया है वो जंगल में घुस गई है, ऐसे जंगल में जहाँ पे धूप भी नहीं है, जंगल में घुस गई है, बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन माहा। ठीक है, घने जंगल के बीच में घुस गई है, कौन, छाया, छाया घने जंगल के बीच में घुस गई है और वहाँ पर भी एक घर देखकर, उस घर में भी एक कोना ढूंढ कर वहाँ जाकर अपने शरीर को लेकर छुप गई है। क्यों? क्योंकि छाया को भी आज छाया चाहिए, छाया भी आज छाया ढूंढने के लिए भयंकर गर्मी में एक जंगल, जंगल में भी घर, घर में भी एक कोना और कोने में भी छाया ढूंढने के लिए जाकर बैठ गई है। देखा कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा है। अतिशयोक्ति यानी जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है तब अतिशयोक्ति वर्णन होता है। ठीक है, तो यहां पर भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, साथ ही छाया छाया को ढूंढने गई है, यानी छाया का मानवीकरण किया गया है। पर्सोनिफिकेशन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, छाया का भी मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है जब किसी भी निर्जीव वस्तु को काम करते हुए मनुष्य की तरह सजीव दिखाया जाता, पीड़ा झेलते हुए दिखाया जाता है, तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला दोहा करते हैं। अगले दोहे में कबीर दास ने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रीतिकाल के कवि श्रृंगार रस का वर्णन करने में माहिर थे। श्रृंगार रस के भी दो पक्षों की बात मैंने की है। इससे पहले भारे भवन में दो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बातचीत हो रही है, वहाँ मैंने आपको बताया था संयोग श्रृंगार का वर्णन है। लेकिन अभी जहाँ मैं आप बता रही हूँ, अब जो हम दोहा पढ़ने जा रहे हैं, इस दोहे में वियोग श्रृंगार का वर्णन है। एक विरहणी नायिका है जिसका वर्णन इसमें किया जा रहा है। दोहा है, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कही है हु सब तेरो हियो मेरे ही है की बात। सबसे पहले अर्थ लिख लेते हैं। कागद, कागज, लिखत न बनत, लिखा नहीं जाता, संदेशु, संदेश या मैसेज, लजात, लज्जा आना, शर्मा जाना, कही है कह देगा, ही है हृदय। असल में क्या हुआ है कि जो बिहारी की नायिका है, उसका प्रियतम, उसका जो नायक है, काम करने के लिए कहीं विदेश चला गया है। पहले विदेश का अर्थ होता था दूसरे गांव में, क्योंकि कोई आने जाने का साधन नहीं था, कई कई महीने पैदल चलने में लग जाते थे। काठ गाड़ी मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो पैदल जा रहे हैं। तो जो आदमी एक बार चला जाता था वो काफ़ी समय तक नहीं आता था। अब सोचिए, उस समय मोबाइल का ज़माना तो था नहीं कि आपने मैसेज कर दिया और काम हो गया। तो बिहारी की जो नायिका है, ये नायिका विरहिणी नायिका है। विरहिणी बोलते हैं जब प्रियतम दूर हो जाता है और हम उसके दुख में डूब जाते हैं। तो उस समय की जो नायिका अपने विरह का वर्णन कर रही है, वो बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। अर्थ देखते हैं इनके। कागज पर लिखत न बनत, विरहिणी नायिका कहती है कि मेरा प्रियतम बहुत समय से गांव से बाहर गया हुआ है काम करने के लिए, और मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ। तो कहती है कागज पर लिखत न बनत, कागज पर लिखते हुए नहीं बनता, यानी प्रेम का संदेशा लिखना चाहती है, पर वो प्रेम का संदेशा अपने प्रेमी को देने के लिए कागज पर लिखते हुए उसे नहीं बनता है। हो सकता है कि बिहारी की नायिका अनपढ़ हो, लिखना ही ना आता हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो लिखते हुए शर्मा रही हो। तो बिहारी की नायिका कहती है कि भाई कागज पर लिखते हुए तो मुझसे बन नहीं रहा है, मैं इस प्रेम का संदेशे को लिख नहीं पा रही हूँ। और किसी को ये संदेशा कहकर अगर मैं भेजूँ कि तुम दूसरे गांव जा रहे हो, मेरे प्रियतम को जाके कहना कि मैं तुम्हारे प्रेम में मरी जा रही हूँ, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, तो अगर मैं ऐसी बात करूँ तो शर्म आती है। तो किसी को कहकर भी संदेशा भेज नहीं पा रही है और कागज पर लिख भी नहीं पा रही है। इसने बड़ा अच्छा तरीका निकाल लिया है अपनी बात अपने प्रियतम तक पहुंचाने के लिए। सबसे बढ़िया तरीका निकाल लिया, टेलीपैथी। कहती है कही है वो सब तेरे हुए मेरे ही है की बात, कि है मेरे प्रियतम, जिस पीड़ा को मैं झेल रही हूँ ना, तू क्योंकि मेरे से प्यार करता है तो तेरा हृदय भी उस पीड़ा को झेल रहा होगा, इसलिए जो तेरा हृदय है, तेरे हृदय को मेरे हृदय अपनी बात जाकर खुद ही बता देगा। यानी टेलीपैथी के थ्रू बताना चाह रही है कि जो चीज़ मेरा दिल महसूस कर रहा है, वही चीज़ तेरा दिल भी तो महसूस कर रहा होगा। तो अपने दिल को एक तसल्ली सी दे ली है उसने, अपने जीने का एक कारण मान लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे। अगले दोहे पर चलते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण है। अगले दोहे में बिहारी ने भगवान कृष्ण का अपने साथ संबंध बताते हुए वर्णन किया है। कहता है, प्रगट भय द्विज राज कुल, सुबह से बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलोस सब, केसव के सब राई। सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं। द्विज राज ब्राह्मण कुल, सुबस अपनी इच्छा से, प्रगट भय यानी प्रकट होना, पैदा होना, केशव श्री कृष्ण के लिए, केशव राय बिहारी के पिता हैं, उनका नाम है बिहारी के पिता का, कलेश दुख, हरो दूर करना। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम कहीं पर भी अपने किसी काम के लिए, आज का जो हमारा स्वार्थ का जमाना है, इस जमाने में अगर हम किसी के पास अपने काम के लिए जाते हैं तो हम उसे दुनिया भर की अपनी पहचान बताते हैं कि हमें फलाने ने भेजा, हम उस समय मिले थे तो इसलिए मेरा काम कर दो। तो हम एक अलग सा ही माहौल बना लेते हैं, एक स्वार्थ वाला, जिसको कहते हैं चापलूसी वाला, और दुनिया भर की अपनी पहचान हम बताना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इस दोहे में भी हम कुछ इसी तरह की बात को देखने वाले हैं। बिहारी सत्संग से लिया गया ये दोहा, जिसमें बिहारी भगवान कृष्ण को कहते हैं, प्रकट भय द्विज राजकुल, कि देखो हम दोनों, यानी भगवान कृष्ण तुम भी और मैं बिहारी, हम दोनों ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। ठीक है, तुम चंद्रवंशी हो और मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, यानी हम दोनों ही चंद्रवंशी, दोनों ही ब्राह्मण कुल के हैं। सुबह से बसे ब्रज आई, और हम अपनी इच्छा से बस के ब्रज में बसने के लिए आए थे, यानी हम दोनों ही ब्रज के निवासी हैं। और तुम केशव कहलाते हो और मैं केशव का पिता कहलाता हूँ, क्योंकि केशव राय मेरे पिता का नाम था। तो देखा जाए हमारे भीतर सारी समानताएं हैं, तो इन समानताओं के होने के कारण तो तुम्हें मेरे जीवन में आए हुए सभी कष्टों को, सभी कलेशों को, सभी दुखों को, सभी कठिनाइयों को दूर कर देना चाहिए, है ना। भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते करते स्वार्थी हो गया है और अपने मतलब की बात करनी शुरू कर दी इसने, पर इतना मतलब तो बनता ही है। तो देखा कितना सुंदर वर्णन भगवान कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़कर बिहारी ने किया है। अब अगले दोहे पर चलते हैं। अगला दोहा है, जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। प्रस्तुत दोहे में बाह्य आडंबरों का खंडन करते हुए बिहारी ने कहा है, खंडन करते हुए यानी उन पर चोट करते हुए, बाह्य आडंबर यानी दिखावा, जैसे हम मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, घंटी बजाते हैं, ज्योत जलाते हैं, इन सब चीज़ों का खंडन करते हुए बिहारी ने इस दोहे का की रचना की है। और इस दोहे में कितने सुंदर तरीके से उसने सारी बातों को सामने रख दिया है। यदि हम इसमें मन कांचे शब्द को ध्यान से देखें तो इसमें हमें रूपक अलंकार दिखाई देगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको अलंकार इसमें साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैं अलंकार आपको करवा चुकी हूँ, तो आपको पहचान आ रही है, समझ में आ रहा है, तभी आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इनके अर्थ देख लेते हैं। जप माला, माला जपना, छापे, छापे हुए कपड़े पहनना। आपने देखा होगा राम नाम की चादर बहुत सारे लोग पहनते हैं, चादर के ऊपर लिखा होता है राम राम, ओम ओम, राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे बहुत सारे आपको आडंबर मिलेंगे। सरे पूरा होना, मन कांचे, मन रूपी कंचा, कंचा देखा ना आपने, जो कांच का होता है छोटा सा, जिसे बच्चे पहले गोलियां खेलते थे, तो मन कांचे, मन रूपी कंचा, नाचे नाचना, वृथा बेकार में, सांचे सच्ची भक्ति वाला, रांचे प्रसन्न होना, और राम भगवान के लिए आया। यहाँ पे राम अयोध्या पुरुष राम नहीं है, केवल ईश्वर है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अर्थ देखते हैं। बिहारी कहते हैं कि माला को जपने से, छपे हुए कपड़े पहनने से, तिलक लगाने से तुम्हारा एक भी काम पूरा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक कमरे में बैठ जाओगे, तिलक लगाओगे, छपे हुए कपड़े पहनोगे और बाहर दुनिया भर के अपराध करते घूमोगे तो तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, नहीं, तुम्हारा कोई काम पूरा नहीं होगा। जब तक तुम्हारा ये मन रूपी कंचा बेकार में ही संसार के मोह माया के जाल में इधर उधर भटकता रहेगा, नाचता रहेगा, तब तक तुम्हें सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तब तक तुम ईश्वर के सच्चे भक्त नहीं बन सकते। तब तक तुम्हारा ईश्वर तुमसे खुश नहीं हो सकता। ईश्वर केवल उन्हीं के ऊपर खुश होता है जो लोग सच्चे अर्थों में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जाति का कल्याण करते हुए अपना भी कल्याण करते हैं। ठीक है, कितने सुंदर तरीके से बिहारी ने अपनी इन दोहों में भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करने के साथ साथ नीति की बात भी आप लोगों के साथ की है। तो आज के लिए बस आज इतना ही। अगली कक्षा में अगले विषय के साथ अगली बात करेंगे। तब तक के लिए मंजू गुप्ता को विराम। धन्यवाद। मोर सांप को खा जाता है। कभी कहते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी के कारण ये सारे के सारे एक जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि भयंकर गर्मी के कारण वन भी तपस्या भूमि बन गया है, तपोवन बन गया। ऐसे लगता है जैसे वो तप भूमि है और ये चारों ने अपने अपने व्यवहार यानी हिंसक व्यवहार को छोड़कर अहिंसक हो गए हैं। इतनी भयंकर गर्मी के कारण इनके शरीर में इतना आलस्य भर गया है कि अपने सामने शिकार को पड़े हुए देखकर भी उस पे झपट्टा नहीं मार रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने अपने द्वेष, अपनी ईर्ष्या, अपनी हिंसा सब त्याग दिया है और सब तपस्वी बन गए हैं। ठीक है, आगे के दो दोहे अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं मंजू गुप्ता परछाई चैनल में आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बिहारी के कुछ दोहे कक्षा 10वीं के लिए। उम्मीद करती हूँ पहले दोहे भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी हम आगे के दोहों पर ध्यान देते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने बात की थी भयंकर गर्मी की और कृष्ण की सुंदरता की। आज हम बात करते हैं गोपियों की अटखेलियों की। अटखेलियाँ चुहुलबाजी, भगवान के साथ छेड़छाड़, है ना? तो शुरू करते हैं। बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बहुनु हसे दैन कहे नटी जाए। कितना सुंदर वर्णन किया गया है बिहारी ने। इतने सुंदर वर्णन, इतनी सुंदर भाषा को लेकर आनंद ही आनंद बिखेर दिया है। पहले सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि आपको अर्थ समझने में कोई कठिनाई ना हो। बतरस अर्थात बातचीत का आनंद, बतरस बत यानी बात, रस यानी आनंद, तो पूरा अर्थ बना बातचीत का आनंद। लाल श्री कृष्ण के लिए, जैसे हम प्यार करते हैं, माँ को भी देखा होगा घर में बोलती है अरे मेरे लाल मेरे प्यारे, तो लाल अर्थात श्री कृष्ण। मुरली आपको पता ही है बांसुरी। लुकाई एक देहाती शब्द है छुपाना। सोहों शपथ कसम खाना, बहनों बहों से यानी आईब्रोज जिसको आप बोलते हैं, नटीजाई मना करना। ठीक है, अब हम इनके अर्थ देखते हैं। ये दोहा भी बिहारी सतसई से लिया गया है। मैं अगर ये कहूँ कि बिहार भी शब्द को हटा दूँ तो बिहारी सतसई से ही लिया गया है, क्योंकि इनकी एकमात्र रचना सतसई ही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सतसई अर्थात 700 दोहों का समूह, 700 दोहे हैं उसमें। यदि हम समास की दृष्टि से देखें तो इसमें आपको द्विगु समास दिखाई देता है, और परीक्षा की दृष्टि से भी मूल्यवान है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। दोहा करते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोहो करे बहुनु हसे दैन कहे नटी जाए। भगवान कृष्ण के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। भगवान कृष्ण को अपनी बांसुरी चुराए जाने का दुख है, बार बार गोपियों से पूछ रहे हैं, क्योंकि जब गोपियों को तंग करते हैं तो गोपियां शिकायत करने जाती हैं माँ यशोदा के पास। और अभी गोपियों ने भगवान कृष्ण की बांसुरी छुपा ली है, क्योंकि वो भी तो चाहती है उनसे बात करना। तो भगवान कृष्ण की बांसुरी छुपा ली है, और छुपाने के पीछे केवल एक ही कारण है, भगवान से बात करना। क्योंकि भगवान कृष्ण को अपनी बांसुरी बहुत प्यारी है और वो हर समय अपने होठों के साथ उसे लगाए रखते हैं, इसलिए गोपियों ने उसे अपनी सौतन मान लिया है। उनका मानना है कि जब तक ये बांसुरी इनके होठों से लगी रहेगी भगवान कृष्ण हमसे बात नहीं करेंगे, इसलिए बातों का रस प्राप्त करने के लिए उन्होंने उनकी बांसुरी ही छिपा ली है। आपने कहावत भी सुनी होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वो कहावत यहीं से आई है। तो जब बांसुरी ही नहीं रहेगी तो भगवान कृष्ण बजाएंगे किसे, फिर तो मजबूरन हमसे बात करेंगे ही। पर भगवान कृष्ण तो भगवान है ना, उन्हें पता है कि गोपियों ने छुपाई है, पर फिर भी अपनी लीलाओं को दिखाते हुए गोपियों से कहते हैं, अरे दे दो ना मेरी बांसुरी, तुम ही ने छुपाई है, अरे दे दो। गोपियां कसम खा रही हैं भगवान कृष्ण की, अरे ना ना हमने नहीं छुपाई तुम्हारी बांसुरी ना, और एक दूसरे को इशारों में, आंख के इशारों में वोहें मटका मटका के एक दूसरे को कह रही हैं कि हाँ मत कर देना, नहीं तो ये बात नहीं करेंगे, किसी को भी बताने से मना कर रही हैं। और भगवान, और इतना ही नहीं भगवान कृष्ण की कसम भी खा रही हैं कि नहीं नहीं हमने तुम्हारी बांसुरी नहीं छुपाई। और भगवान कृष्ण भी मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछ रहे हैं, अरे दे दो ना मेरी बांसुरी। तो कितना सुंदर वर्णन किया है उन दोनों के बीच में जो अटखेलियां चल रही हैं। इतना सुंदर वर्णन शायद बिहारी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। अगले दोहे में श्रृंगार रस का वर्णन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रीतिकाल के प्रबुद्ध कवि माने जाते हैं ये। और रीतिकाल के इन प्रबुद्ध कवियों में मुख्य बात होती है कि ये श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं, और श्रृंगार रस का भी संयोग और वियोग दोनों पक्ष। यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, देखिए कितना सुंदर वर्णन है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैन नहीं सोबत। दोहे को करने से पहले इनके अर्थ देख लेते हैं। कहत कहना या बात करना, नटत इनकार करना या मना करना, रीझत मोहित हो जाना, खीजत बनावटी गुस्सा कभी कभी मम्मी भी करती है घर में। मिलत मिलना, खिलत खुश हो जाना, लजियात शर्माना, भौन भवन, नैनहू नेत्रों से। बच्चों रीतिकाल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि बिना अलंकारों के इनका काम नहीं चलता, भर के अलंकार हैं। यदि यहाँ पर भी आप ध्यान से देखें तो कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, त वर्ण की आखिरी जो आखिरी त वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। ध्यान दीजिएगा, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, आखिरी वर्ण यानी जो आखिरी वर्ण त दिखाई दे रहा है, त वर्ण जो से दो से ज्यादा बार आपको दिखाई दे रहा है, जब दो या दो से अधिक बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, या तो वो पहला हो या आखिरी हो, तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, बिहारी कवि के सतसई से लिया गया यह दोहा जो श्रृंगार रस के संयोग पक्ष को दिखाता है, इसमें अगर हम थोड़ा सरल तरीके से इसको देखें तो एक नायक और नायिका है। हम थोड़ा सा इसको थोड़ा नाटकीय रूप से देखते हैं। एक नायक और नायिका हैं, विवाह मंडप में बैठे हैं। अब पुरानी परंपरा है कि नायक और नायिका एक दूसरे से बात तो कर नहीं सकते, आज का जमाना तो है नहीं, है ना, कि पहले रिलेशनशिप होगी फिर शादी होगी। ये उस समय की बात है जब बिहारी था, यानी आज से कई साल पहले। तो यहाँ पर नायक और नायिका एक विवाह मंडप में बैठे हैं, एक दूसरे के सामने हैं। बात देखिए कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हैं और आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं, है ना। कहत नटत, लड़का कुछ कहता है, यानी नायक नायिका को आंख के इशारे से ही कुछ कह देता है, और लड़की हल्की सी गर्दन हिला देती है, मना कर देती है, नटत मना कर देती है। उसके इस अदा के ऊपर लड़का रीझ जाता है, यानी नायक रीझ जाता है, खुश हो जाता है, मोहित हो जाता है उसके ऊपर। उसे अच्छा लगता है कि हाँ नायिका ऐसा रिएक्शन दे रही है, उसे इस तरह के भाव की उम्मीद नहीं थी शायद। जब वो खुश हो जाता है तो लड़की हल्का सा ड्रामा करती है, गुस्सा होने का नाटक कर रही है कि ये क्या बात कर रहे हो भाई। ऐसे करते करते दोनों की नज़र मिल जाती है, दोनों की नज़र मिलती है और दोनों खुश हो जाते हैं। और जैसे ही दोनों खिलत खिलत यानी खुश होना, दोनों जैसे ही खुश होते हैं दोनों आपस में शर्मा भी जाते हैं, लजियात दोनों आपस में शर्मा भी जाते हैं। तो इतना सुंदर कम शब्दों में वर्णन केवल बिहारी कर सकता है। कहता है कि भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में यानी पूरा भवन, यानी समाज के सारे लोग विवाह में इकट्ठे होते हैं, मालूम है ना आपको, वर पक्ष और वधु पक्ष सारा समाज इकट्ठा है, और उनके बीच में ये दोनों आंखों के इशारों से बात कर रहे हैं और किसी को नहीं पता, पूरा रोमांस हो गया। ये सोच लो चलती है कि खंडाला भी हो गया इनका, पर फिर भी इतना सुंदर वर्णन और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अगले दोहे में चलते हैं। अगले दोहे में भयंकर गर्मी का वर्णन किया गया है। बिहारी सतसई के सतसई रचना से ही ये दोहा हो रहा है हमारे पास। बैठी रही अति सघन बन बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाह चाहती छाह। भयंकर गर्मी का वर्णन किया गया, भयंकर, इससे पहले भी हमने एक दोहा पढ़ा था जिसमें भयंकर गर्मी का वर्णन किया गया था। यहाँ पर भी एक और दोहा हमारे पास आया है जिसके अंदर जेठ की दोपहरी, आपको पता होगा कि जो गर्मी होती है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, उसमें भी अलग अलग हिस्से होते हैं, तो जेठ की दोपहर जो बोली जाती है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं। सघन घना, बन जंगल, पैठी घुसना, पैठी मतलब जब कहीं जबरदस्ती हम कहीं घुस जाते हैं ना, उसके लिए आता है ये शब्द पैठ जाना। सदन तन भवन में, जेठ जून का महीना, छाहो छाया भी, है ना। जेठ यानी जून का महीना, आप देखते हो आपकी गर्मियों की छुट्टियां जून में पड़ती हैं, वो इसीलिए ताकि बच्चे गर्मी से बच सकें, शरीर को जला देने वाली गर्मी होती है इसमें, ठीक है। कवि कहता है कि जून का महीना है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, और इस भयंकर गर्मी के अंदर जो छाया है, ध्यान से सुनना, जेठ का महीना है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, जो छाया है वो जंगल में घुस गई है, ऐसे जंगल में जहाँ पे धूप भी नहीं है, जंगल में घुस गई है, बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माहा, ठीक है, घने जंगल के बीच में घुस गई है, कौन, छाया, छाया घने जंगल के बीच में घुस गई है, और वहां पर भी एक घर देखकर, उस घर में भी एक कोना ढूंढकर वहां जाकर अपने शरीर को लेकर छुप गई है। क्यों? क्योंकि छाया को भी आज छाया चाहिए, छाया भी आज छाया ढूंढने के लिए भयंकर गर्मी में एक जंगल, जंगल में भी घर, घर में भी एक कोना, और कोने में भी छाया ढूंढने के लिए जाकर बैठ गई है। देखा कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा है। अतिशयोक्ति यानी जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है तब अतिशयोक्ति वर्णन होता है, ठीक है। तो यहां पर भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, साथ ही छाया छाया को ढूंढने गई है, यानी छाया का मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, छाया का भी मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है, जब किसी भी निर्जीव वस्तु को काम करते हुए मनुष्य की तरह सजीव दिखाया जाता, पीड़ा झेलते हुए दिखाया जाता है, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला दोहा करते हैं। अगले दोहे में कबीरदास ने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रीतिकाल के कवि श्रृंगार रस का वर्णन करने में माहिर थे। श्रृंगार रस के भी दो पक्षों की बात मैंने की है। इससे पहले भारे भवन में दो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बातचीत हो रही है, वहाँ मैंने आपको बताया था संगोल संयोग श्रृंगार का वर्णन है, लेकिन अभी जहाँ मैं आप बता रही हूँ, अब जो हम दोहा पढ़ने जा रहे हैं, इस दोहे में वियोग श्रृंगार का वर्णन है। एक विरहणी नायिका है जिसका वर्णन इसमें किया जा रहा है। दोहा है, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कही है हु सब तेरो हियो मेरे ही है की बात। सबसे पहले अर्थ लिख लेते हैं। कागद, कागज, लिखत न बनत, लिखा नहीं जाता, संदेशु, संदेश या मैसेज, लजात, लज्जा आना, शर्मा जाना, कही है कह देगा, ही है हृदय। असल में क्या हुआ है कि जो बिहारी की नायिका है, उसका प्रियतम, उसका जो नायक है, काम करने के लिए कहीं विदेश चला गया है। पहले विदेश का अर्थ होता था दूसरे गांव में, क्योंकि कोई आने जाने का साधन नहीं था, कई कई महीने पैदल चलने में लग जाते थे, काठ गाड़ी मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो पैदल जा रहे हैं, तो जो आदमी एक बार चला जाता था वो काफ़ी समय तक नहीं आता था। अब सोचिए, उस समय मोबाइल का ज़माना तो था नहीं कि आपने मैसेज कर दिया और काम हो गया। तो बिहारी की जो नायिका है, ये नायिका विरहिणी नायिका है। विरहिणी बोलते हैं जब प्रियतम दूर हो जाता है और हम उसके दुख में डूब जाते हैं। तो उस समय की जो नायिका अपने विरह का वर्णन कर रही है, वो बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। अर्थ देखते हैं कि कागज पर लिखत न बनत, विरहिणी नायिका कहती है कि मेरा प्रियतम बहुत समय से गांव से बाहर गया हुआ है काम करने के लिए, और मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ। तो कहती है कागज पर लिखत न बनत, कागज पर लिखते हुए नहीं बनता, यानी प्रेम का संदेशा लिखना चाहती है, पर वो प्रेम का संदेशा अपने प्रेमी को देने के लिए कागज पर लिखते हुए उसे नहीं बनता है। हो सकता है कि बिहारी की नायिका अनपढ़ हो, लिखना ही ना आता हो, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो लिखते हुए शर्मा रही हो। तो बिहारी की नायिका कहती है कि भाई कागज पर लिखते हुए तो मुझसे बन नहीं रहा है, मैं इस प्रेम का संदेशे को लिख नहीं पा रही हूँ। और किसी को ये संदेशा कहकर अगर मैं भेजूँ कि तुम दूसरे गांव जा रहे हो, मेरे प्रियतम को जाके कहना कि मैं तुम्हारे प्रेम में मरी जा रही हूँ, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, तो अगर मैं ऐसी बात करूँ तो शर्म आती है। तो किसी को कहकर भी संदेशा भेज नहीं पा रही है और कागज पर लिख भी नहीं पा रही है। इसने बड़ा अच्छा तरीका निकाल लिया है अपनी बात अपने प्रियतम तक पहुंचाने के लिए, सबसे बढ़िया तरीका निकाल लिया, टेलीपैथी। कहती है, कही है हूँ सब तेरे हुए मेरे ही है की बात, कि है मेरे प्रियतम, जिस पीड़ा को मैं झेल रही हूँ ना, तू क्योंकि मेरे से प्यार करता है तो तेरा हृदय भी उस पीड़ा को झेल रहा होगा, इसलिए जो तेरा हृदय है, तेरे हृदय को मेरे हृदय अपनी बात जाकर खुद ही बता देगा। यानी टेलीपैथी के थ्रू बताना चाह रही है कि जो चीज़ मेरा दिल महसूस कर रहा है वही चीज़ तेरा दिल भी तो महसूस कर रहा होगा। तो अपने दिल को एक तसल्ली सी दे ली है उसने, अपने जीने का एक कारण मान लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे। अगले दोहे पर चलते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण है। अगले दोहे में बिहारी ने भगवान कृष्ण का अपने साथ संबंध बताते हुए वर्णन किया है। कहता है, प्रगट भय द्विज राज कुल सुबह से बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलोस सब के सब के सब राई। सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं। द्विज राज ब्राह्मण कुल, सुबस अपनी इच्छा से, प्रगट भय यानी प्रकट होना, पैदा होना, केशव श्री कृष्ण के लिए, केशव राई बिहारी के पिता हैं, उनका नाम है बिहारी के पिता का, कलेश दुख, हरो दूर करना। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम कहीं पर भी अपने किसी काम के लिए, आज का जो हमारा स्वार्थ का जमाना है, इस जमाने में अगर हम किसी के पास अपने काम के लिए जाते हैं तो हम उसे दुनिया भर की अपनी पहचान बताते हैं कि हमें फलाने ने भेजा, हम उस समय मिले थे तो इसलिए मेरा काम कर दो। तो हम एक अलग सा ही माहौल बना लेते हैं, एक स्वार्थ वाला, जिसको कहते हैं चापलूसी वाला, और दुनिया भर की अपनी पहचान हम बताना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इस दोहे में भी हम कुछ इसी तरह की बात को देखने वाले हैं। बिहारी सत्संग से लिया गया यह दोहा, जिसमें बिहारी भगवान कृष्ण को कहते हैं, प्रकट भय द्विज राज कुल, कि देखो हम दोनों, यानी भगवान कृष्ण तुम भी और मैं बिहारी, हम दोनों ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ठीक है, तुम चंद्रवंशी हो और मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, यानी हम दोनों ही चंद्रवंशी, दोनों ही ब्राह्मण कुल के हैं। सुबह से बसे ब्रज आई, और हम अपनी इच्छा से बस के ब्रज में बसने के लिए आए थे, यानी हम दोनों ही ब्रज के निवासी हैं, और तुम केशव कहलाते हो और मैं केशव का पिता कहलाता हूँ, क्योंकि केशव राय मेरे पिता का नाम था। तो देखा जाए हमारे भीतर सारी समानताएं हैं, तो इन समानताओं के होने के कारण तो तुम्हें मेरे जीवन में आए हुए सभी कष्टों को, सभी कलेशों को, सभी दुखों को, सभी कठिनाइयों को दूर कर देना चाहिए, है ना। भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते करते स्वार्थी हो गया है और अपने मतलब की बात करनी शुरू कर दी इसने, पर इतना मतलब तो बनता ही है। तो देखा कितना सुंदर वर्णन भगवान कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़कर बिहारी ने किया है। अब अगले दोहे पर चलते हैं। अगला दोहा है, जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। प्रस्तुत दोहे में बाह्य आडंबरों का खंडन करते हुए बिहारी ने कहा है, खंडन करते हुए यानी उन पर चोट करते हुए, बाह्य आडंबर यानी दिखावा, जैसे हम मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, घंटी बजाते हैं, ज्योत जलाते हैं, इन सब चीज़ों का खंडन करते हुए बिहारी ने इस दोहे का की रचना की है और इस दोहे में कितने सुंदर तरीके से उसने सारी बातों को सामने रख दिया है। यदि हम इसमें मन कांचे शब्द को ध्यान से देखें तो इसमें हमें रूपक अलंकार दिखाई देगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको अलंकार इसमें साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैं अलंकार आपको करवा चुकी हूँ, तो आपको पहचान आ रही है, समझ में आ रहा है, तभी आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इनके अर्थ देख लेते हैं। जप माला, माला जपना, छापे, छापे हुए कपड़े पहनना, आपने देखा होगा राम नाम की चादर बहुत सारे लोग पहनते हैं, चादर के ऊपर लिखा होता है राम राम, ओम ओम, राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे बहुत सारे आपको आडंबर मिलेंगे। सरे, पूरा होना, मन कांचे, मन रूपी कंचा, कंचा देखा ना आपने, जो कांच का होता है छोटा सा, जिसे बच्चे पहले गोलियां खेलते थे, तो मन कांचे, मन रूपी कंचा, नाचे, नाचना, वृथा, बेकार में, साचे, सच्ची भक्ति वाला, रांचे, प्रसन्न होना, और राम भगवान के लिए आया। यहाँ पे राम अयोध्या पुरुष राम नहीं है, केवल ईश्वर है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अर्थ देखते हैं, बिहारी कहते हैं कि माला को जपने से, छपे हुए कपड़े पहनने से, तिलक लगाने से तुम्हारा एक भी काम पूरा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक कमरे में बैठ जाओगे, तिलक लगाओगे, छपे हुए कपड़े पहनोगे और बाहर दुनिया भर के अपराध करते घूमोगे तो तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, नहीं, तुम्हारा कोई काम पूरा नहीं होगा। जब तक तुम्हारा ये मन रूपी कंचा बेकार में ही संसार के मोह माया के जाल में इधर उधर भटकता रहेगा, नाचता रहेगा, तब तक तुम्हें सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक तुम ईश्वर के सच्चे भक्त नहीं बन सकते, तब तक तुम्हारा ईश्वर तुमसे खुश नहीं हो सकता। ईश्वर केवल उन्हीं के ऊपर खुश होता है जो लोग सच्चे अर्थों में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जाति का कल्याण करते हुए अपना भी कल्याण करते हैं। ठीक है, कितने सुंदर तरीके से बिहारी ने अपनी इन दोहों में भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करने के साथ साथ नीति की बात भी आप लोगों के साथ की है। तो आज के लिए बस आज इतना ही, अगली कक्षा में अगले विषय के साथ अगली बात करेंगे। तब तक के लिए मंजू गुप्ता को विराम, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं मंजू गुप्ता आज आपके साथ परछाई चैनल में एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ बिहारी के दोहे कक्षा 10वीं के लिए। कृपया ध्यान से सुने। बिहारी, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि बिहारी अर्थात भगवान कृष्ण है, वृंदावन के रसिया को कौन भूल सकता है। उन्हीं के नाम पर आधारित इनका नाम भी बिहारी रखा गया है। इनके बारे में कहा जाता है, मांझी पोंछी चमकाई, युत प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख रची सत्सई एक। अर्थात मांझकर, पोंछकर, चमकाकर अनेक प्रयास करने के बाद एक ऐसी प्रतिभा सामने आई है, लंबा जीवन, अनेक सुख वाले बिहारी ने एक ग्रंथ बिहारी सत्सई की रचना की। सत्सई अर्थात जिसमें 700 दोहे हों। यदि इसके अंदर हम समास की दृष्टि से देखें तो इसमें हमें द्विगु समास भी दिखाई देता है, 700 दोहों का समूह। बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है, सत्सैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अच्छा अर्थात सत्सई के दोहे ऐसे हैं जैसे किसी मधुमक्खी का डंक हो। देखने में जितने छोटे लगते हैं उनका घाव उतना गहरा उतना चोटीला होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इनका नाम बिहारी अर्थात कृष्ण के नाम पर ही आधारित है। कृष्ण ब्रज भाषा से संबंधित थे, ब्रज के ही थे। बिहारी की भाषा भी ब्रज की है, इसलिए इनकी भाषा को ब्रज भाषा कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म भी ब्रज में ही हुआ था। इनके दोहे श्रृंगार रस से संबंधित हैं। श्रृंगार रस में भक्ति भी है, नीति भी है, प्रेम भी है और श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का वर्णन भी है। रीतिकाल के मुख्य कवियों में से एक कवि हैं बिहारी। तो चलिए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चों इनके अर्थ को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मनो नील मनि सैल पर आतप परियो प्रभात। अर्थ लिख लीजिए पहले। सोहत अच्छा लगना, ओढ़े ओढ़कर, पीतु पीला, पटु कपड़ा, गात शरीर, नीलमणि नीलमणि पर्वत, आतपु धूप या सूर्य के लिए भी कह सकते हैं, बाल सूर्य जो अभी अभी उगा हो यानी उषाकाल का समय, प्रभात सुबह, ठीक है। इस दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का सांवला शरीर है और उस सांवले शरीर पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर अभी अभी बाल सूर्य उदय हुआ हो। उनकी इस सुंदरता का वर्णन किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ उसका अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए बिहारी ने कहा है कि भगवान कृष्ण का सांवला शरीर है और इस सांवले शरीर पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। पीले वस्त्र धारण करने के कारण वे ऐसा लगता है मानो अभी अभी नीलमणि पर्वत पर बाल सूर्य उदय हुआ हो और उसकी किरणें उस पर्वत पर बिखर गई हों। उनकी सुंदरता का वर्णन इस दोहे में किया गया है। बच्चों यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात में आपको उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिखेगा, जहाँ पर आपको मनो मानो मानहू जनु जानो जानहू जैसे शब्द मिलेंगे वहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे दोहे पर चलते हैं। हमारा दूसरा दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। सबसे पहले हम इनके अर्थ लिख लेते हैं। अहि सांप, एकत इकट्ठे, बसत रहते हैं, मृग हिरण, तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, दीरग दाग भयंकर गर्मी, निदाग ग्रीष्म ऋतु। ये सभी दोहे उनकी सच्चाई से लिए गए हैं। इस दोहे में ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता का वर्णन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि सारे जानवर, कौन कौन से जानवर, मोर सांप हिरण और शेर, हिरण शेर का शिकार होता है, शेर हिरण को खा जाता है, सांप मोर को खा जाता है, सॉरी। मोर सांप को खा जाता है। कवि कहते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी के कारण ये सारे के सारे एक जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि भयंकर गर्मी के कारण वन भी तपस्या भूमि बन गया है, तपोवन बन गया। ऐसे लगता है जैसे वो तप भूमि है और ये चारों ने अपने अपने व्यवहार यानी हिंसक व्यवहार को छोड़कर अहिंसक हो गए हैं। इतनी भयंकर गर्मी के कारण इनके शरीर में इतना आलस्य भर गया है कि अपने सामने शिकार को पड़े हुए देखकर भी उस पर झपट्टा नहीं मार रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने अपने द्वेष, अपनी ईर्ष्या, अपनी हिंसा सब त्याग दिया है और सब तपस्वी बन गए हैं। ठीक है, आगे के दो दोहे अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं मंजू गुप्ता परछाई चैनल में आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बिहारी के कुछ दोहे कक्षा 10वीं के लिए। उम्मीद करती हूँ पहले दोहे भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी हम आगे के दोहों पर ध्यान देते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने बात की थी भयंकर गर्मी की और कृष्ण की सुंदरता की। आज हम बात करते हैं गोपियों की अटखेलियों की। अटखेलियाँ चुहलबाजी, भगवान के साथ छेड़छाड़, है ना? तो शुरू करते हैं। बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बहुनू हसे दैन कहे नटी जाए। कितना सुंदर वर्णन किया गया है बिहारी ने, इतने सुंदर वर्णन, इतनी सुंदर भाषा को लेकर आनंद ही आनंद बिखेर दिया है। पहले सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि आपको अर्थ समझने में कोई कठिनाई ना हो। बतरस अर्थात बातचीत का आनंद, बतरस बत यानी बात, रस यानी आनंद, तो पूरा अर्थ बना बातचीत का आनंद। लाल श्री कृष्ण के लिए, जिसे हम प्यार करते हैं, माँ को भी देखा होगा घर में बोलती है अरे मेरे लाल, मेरे प्यारे, तो लाल अर्थात श्री कृष्ण। मुरली आपको पता ही है बांसुरी। लुकाई एक देहाती शब्द है, छुपाना। सोहो शपथ, कसम खाना। बहनू बहुसे यानी आईब्रोज जिसको आप बोलते हैं। नटी जाई मना करना। ठीक है, अब हम इनके अर्थ देखते हैं। ये दोहा भी बिहारी सतसई से लिया गया है। मैं अगर ये कहूँ कि बिहार भी शब्द को हटा दूँ तो बिहारी सतसई से ही लिया गया है, क्योंकि इनकी एकमात्र रचना सतसई ही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सतसई अर्थात 700 दोहों का समूह, 700 दोहे हैं उसमें। यदि हम समास की दृष्टि से देखें तो इसमें आपको द्विगु समास दिखाई देता है और परीक्षा की दृष्टि से भी मूल्यवान है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। दोहा करते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोहो करे बहुनू हसे दैन कहे नटी जाए। भगवान कृष्ण के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। भगवान कृष्ण को अपनी बांसुरी चुराए जाने का दुख है, बार बार गोपियों से पूछ रहे हैं, क्योंकि जब गोपियों को तंग करते हैं तो गोपियां शिकायत करने जाती हैं माँ यशोदा के पास। और अभी गोपियों ने भगवान कृष्ण की बांसुरी छुपा ली है, क्योंकि वो भी तो चाहती हैं उनसे बात करना। तो भगवान कृष्ण की बांसुरी छुपा ली है और छुपाने के पीछे केवल एक ही कारण है, भगवान से बात करना। क्योंकि भगवान कृष्ण को अपनी बांसुरी बहुत प्यारी है और वो हर समय अपने होठों के साथ उसे लगाए रखते हैं, इसलिए गोपियों ने उसे अपनी सौतन मान लिया है। उनका मानना है कि जब तक ये बांसुरी इनके होठों से लगी रहेगी भगवान कृष्ण हमसे बात नहीं करेंगे, इसलिए बातों का रस प्राप्त करने के लिए उन्होंने उनकी बांसुरी ही छिपा ली है। आपने कहावत भी सुनी होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वो कहावत यहीं से आई है। तो जब बांसुरी ही नहीं रहेगी तो भगवान कृष्ण बजाएंगे किसे, फिर तो मजबूरन हमसे बात करेंगे ही। पर भगवान कृष्ण तो भगवान है ना, उन्हें पता है की गोपियों ने छुपाई है, पर फिर भी अपनी लीलाओं को दिखाते हुए गोपियों से कहते हैं, अरे दे दो ना मेरी बांसुरी, तुम ही ने छुपाई है, अरे दे दो। गोपियां कसम खा रही हैं भगवान कृष्ण की, अरे ना ना, हमने नहीं छुपाई तुम्हारी बांसुरी ना। और एक दूसरे को इशारों में, आंख के इशारों में वोहें मटका मटका के एक दूसरे को कह रही हैं कि हाँ मत कर देना, नहीं तो ये बात नहीं करेंगे। किसी को भी मना करने से, किसी को भी बताने से मना कर रही हैं। और भगवान, और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण की कसम भी खा रही हैं कि नहीं नहीं हमने तुम्हारी बांसुरी नहीं छुपाई। और भगवान कृष्ण भी मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछ रहे हैं, अरे दे दो ना मेरी बांसुरी। तो कितना सुंदर वर्णन किया है उन दोनों के बीच में जो अटखेलियां चल रही हैं। इतना सुंदर वर्णन शायद बिहारी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। अगले दोहे में श्रृंगार रस का वर्णन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रीतिकाल के प्रबुद्ध कवि माने जाते हैं ये। तो रीतिकाल के इन प्रबुद्ध कवियों में मुख्य बात होती है कि ये श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं, और श्रृंगार रस का भी संयोग और वियोग दोनों पक्ष। यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैन नहीं सोवत। दोहे को करने से पहले इनके अर्थ देख लेते हैं। कहत, कहना या बात करना। नटत, इनकार करना या मना करना। रीझत, मोहित हो जाना। खीजत, बनावटी गुस्सा, कभी कभी मम्मी भी करती है घर में। मिलत, मिलना। खिलत, खुश हो जाना। लजियात, शर्माना। भौन, भवन। नैनहु, नेत्रों से। बच्चों, रीतिकाल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि बिना अलंकारों के इनका काम नहीं चलता। भर के अलंकार हैं। यदि यहाँ पर भी आप ध्यान से देखें तो कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, त वर्ण की आखिरी, जो आखिरी त वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। ध्यान दीजिएगा, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, आखिरी वर्ण यानी जो आखिरी वर्ण त दिखाई दे रहा है, त वर्ण जो से दो से ज्यादा बार आपको दिखाई दे रहा है, जब दो या दो से अधिक बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, या तो वो पहला हो या आखिरी हो, तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, बिहारी कवि के सत्सई से लिया गया यह दोहा जो श्रृंगार रस के संयोग पक्ष को दिखाता है। इसमें अगर हम थोड़ा सरल तरीके से इसको देखें तो एक नायक और नायिका है। हम थोड़ा सा इसको थोड़ा नाटकीय रूप से देखते हैं। एक नायक और नायिका हैं, विवाह मंडप में बैठे हैं। अब पुरानी परंपरा है कि नायक और नायिका एक दूसरे से बात तो कर नहीं सकते, आज का जमाना तो है नहीं, है ना, कि पहले रिलेशनशिप होगी फिर शादी होगी। ये उस समय की बात है जब बिहारी था, यानी आज से कई साल पहले। तो यहाँ पर नायक और नायिका एक विवाह मंडप में बैठे हैं, एक दूसरे के सामने हैं। बात देखिए कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हैं और आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं, है ना। कहते नटत, लड़का कुछ कहता है, यानी नायक नायिका को आंख के इशारे से ही कुछ कह देता है, और लड़की हल्की सी गर्दन हिला देती है, मना कर देती है, नटत मना कर देती है। उसके इस अदा के ऊपर लड़का रीझ जाता है, यानी नायक रीझ जाता है, खुश हो जाता है, मोहित हो जाता है उसके ऊपर। उसे अच्छा लगता है कि हाँ नायिका ऐसा रिएक्शन दे रही है, उसे इस तरह के भाव की उम्मीद नहीं थी शायद। जब वो खुश हो जाता है तो लड़की हल्का सा ड्रामा करती है, गुस्सा होने का नाटक कर रही है कि ये क्या बात कर रहे हो भाई। ऐसे करते करते दोनों की नज़र मिल जाती है, दोनों की नज़र मिलती है और दोनों खुश हो जाते हैं। और जैसे ही दोनों खिलत खिलत यानी खुश होना, दोनों जैसे ही खुश होते हैं दोनों आपस में शर्मा भी जाते हैं, लजियात दोनों आपस में शर्मा भी जाते हैं। तो इतना सुंदर कम शब्दों में वर्णन केवल बिहारी कर सकता है। कहता है कि भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में यानी पूरा भवन यानी समाज के सारे लोग विवाह में इकट्ठे होते हैं, मालूम है ना आपको, वर पक्ष और वधु पक्ष सारा समाज इकट्ठा है और उनके बीच में ये दोनों आंखों के इशारों से बात कर रहे हैं और किसी को नहीं पता, पूरा रोमांस हो गया ये सोच लो, चलती है कि खंडाला भी हो गया इनका, पर फिर भी इतना सुंदर वर्णन और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अगले दोहे में चलते हैं। अगले दोहे में भयंकर गर्मी का वर्णन किया गया है। बिहारी सतसई के सतसई रचना से ही ये दोहा हो रहा है हमारे पास। बैठी रही अति सघन बन बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाह चाहती छाह। भयंकर गर्मी का वर्णन किया गया, भयंकर, इससे पहले भी हमने एक दोहा पढ़ा था जिसमें भयंकर गर्मी का वर्णन किया गया था। यहाँ पर भी एक और दोहा हमारे पास आया है जिसके अंदर जेठ की दोपहरी, आपको पता होगा कि जो गर्मी होती है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, उसमें भी अलग अलग हिस्से होते हैं, तो जेठ की दोपहर जो बोली जाती है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं। सघन घना, बन जंगल, पैठी घुसना, पैठी मतलब जब कहीं जबरदस्ती हम कहीं घुस जाते हैं ना उसके लिए आता है ये शब्द, पैठ जाना। सदन तन भवन में, जेठ जून का महीना, छाहो छाया भी है ना, जेठ यानी जून का महीना, आप देखते हो आपकी गर्मियों की छुट्टियां जून में पड़ती हैं, वो इसीलिए ताकि बच्चे गर्मी से बच सकें, शरीर को जला देने वाली गर्मी होती है इसमें। ठीक है, कवि कहता है कि जून का महीना है, भयंकर गर्मी पड़ रही है और इस भयंकर गर्मी के अंदर जो छाया है, ध्यान से सुनना, जेठ का महीना है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, जो छाया है वो जंगल में घुस गई है, ऐसे जंगल में जहाँ पे धूप भी नहीं है, जंगल में घुस गई है, बैठी रही अति सघन बन बैठी सदन तन माहा। ठीक है, घने जंगल के बीच में घुस गई है, कौन, छाया, छाया घने जंगल के बीच में घुस गई है और वहां पर भी एक घर देखकर, उस घर में भी एक कोना ढूंढकर वहां जाकर अपने शरीर को लेकर छुप गई है। क्यों? क्योंकि छाया को भी आज छाया चाहिए, छाया भी आज छाया ढूंढने के लिए भयंकर गर्मी में एक जंगल, जंगल में भी घर, घर में भी एक कोना और कोने में भी छाया ढूंढने के लिए जाकर बैठ गई है। देखा कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा है, अतिशयोक्ति यानी जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है तब अतिशयोक्ति वर्णन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, साथ ही छाया छाया को ढूंढने गई है, यानी छाया का मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, छाया का भी मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है जब किसी भी निर्जीव वस्तु को काम करते हुए मनुष्य की तरह सजीव दिखाया जाता, पीड़ा झेलते हुए दिखाया जाता है, तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला दोहा करते हैं। अगले दोहे में कबीरदास ने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रीतिकाल के कवि श्रृंगार रस का वर्णन करने में माहिर थे। श्रृंगार रस के भी दो पक्षों की बात मैंने की है, इससे पहले भारे भवन में दो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बातचीत हो रही है, वहाँ मैंने आपको बताया था संयोग श्रृंगार का वर्णन है। लेकिन अभी जहाँ मैं आप बता रही हूँ, अब जो हम दोहा पढ़ने जा रहे हैं, इस दोहे में वियोग श्रृंगार का वर्णन है। एक विरहणी नायिका है जिसका वर्णन इसमें किया जा रहा है। दोहा है, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कही है हु सब तेरो हियो मेरे ही एक ही बात। सबसे पहले अर्थ लिख लेते हैं। कागद, कागज, लिखत न बनत, लिखा नहीं जाता, संदेशु, संदेश या मैसेज, लजात, लज्जा आना, शर्मा जाना, कही है कह देगा, ही है हृदय। असल में क्या हुआ है कि जो बिहारी की नायिका है, उसका प्रियतम, उसका जो नायक है, काम करने के लिए कहीं विदेश चला गया है। पहले विदेश का अर्थ होता था दूसरे गांव में, क्योंकि कोई आने जाने का साधन नहीं था, कई कई महीने पैदल चलने में लग जाते थे, काठ गाड़ी मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो पैदल जा रहे हैं, तो जो आदमी एक बार चला जाता था वो काफ़ी समय तक नहीं आता था। अब सोचिए, उस समय मोबाइल का ज़माना तो था नहीं कि आपने मैसेज कर दिया और काम हो गया। तो बिहारी की जो नायिका है, ये नायिका विरहिणी नायिका है। विरहिणी बोलते हैं जब प्रियतम दूर हो जाता है और हम उसके दुख में डूब जाते हैं। तो उस समय की जो नायिका अपने विरह का वर्णन कर रही है, वो बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। अर्थ देखते हैं कि कागज पर लिखत न बनत, विरहिणी नायिका कहती है कि मेरा प्रियतम बहुत समय से गांव से बाहर गया हुआ है काम करने के लिए, और मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ। तो कहती है कागज पर लिखत न बनत, कागज पर लिखते हुए नहीं बनता, यानी प्रेम का संदेशा लिखना चाहती है, पर वो प्रेम का संदेशा अपने प्रेमी को देने के लिए कागज पर लिखते हुए उसे नहीं बनता है। हो सकता है कि बिहारी की नायिका अनपढ़ हो, लिखना ही ना आता हो, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो लिखते हुए शर्मा रही हो। तो बिहारी की नायिका कहती है कि भाई कागज पर लिखते हुए तो मुझसे बन नहीं रहा है, मैं इस प्रेम का संदेशे को लिख नहीं पा रही हूँ, और किसी को ये संदेशा कहकर अगर मैं भेजूँ कि तुम दूसरे गांव जा रहे हो, मेरे प्रियतम को जाके कहना कि मैं तुम्हारे प्रेम में मरी जा रही हूँ, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, तो अगर मैं ऐसी बात करूँ तो शर्म आती है। तो किसी को कहकर भी संदेशा भेज नहीं पा रही है और कागज पर लिख भी नहीं पा रही है। इसने बड़ा अच्छा तरीका निकाल लिया है अपनी बात अपने प्रियतम तक पहुंचाने के लिए, सबसे बढ़िया तरीका निकाल लिया, टेलीपैथी। कहती है कही है वो सब तेरे हुए मेरे ही है की बात, कि है मेरे प्रियतम, जिस पीड़ा को मैं झेल रही हूँ ना, तू क्योंकि मेरे से प्यार करता है तो तेरा हृदय भी उस पीड़ा को झेल रहा होगा, इसलिए जो तेरा हृदय है, तेरे हृदय को मेरे हृदय अपनी बात जाकर खुद ही बता देगा। यानी टेलीपैथी के थ्रू बताना चाह रही है कि जो चीज़ मेरा दिल महसूस कर रहा है, वही चीज़ तेरा दिल भी तो महसूस कर रहा होगा। तो अपने दिल को एक तसल्ली सी दे ली है उसने, अपने जीने का एक कारण मान लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे। अगले दोहे पर चलते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण है। अगले दोहे में बिहारी ने भगवान कृष्ण का अपने साथ संबंध बताते हुए वर्णन किया है। कहता है प्रगट भय द्विज राज कुल, सुबह से बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलोस सब के सब के सब राई। सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं। द्विज राज ब्राह्मण कुल, सुबस अपनी इच्छा से, प्रगट भय यानी प्रकट होना, पैदा होना, केशव श्री कृष्ण के लिए, केशव राय बिहारी के पिता हैं, उनका नाम है बिहारी के पिता का, कलेश दुख हरो दूर करना, अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम कहीं पर भी अपने किसी काम के लिए, आज का जो हमारा स्वार्थ का ज़माना है, इस ज़माने में अगर हम किसी के पास अपने काम के लिए जाते हैं तो हम उसे दुनिया भर की अपनी पहचान बताते हैं कि हमें फलाने ने भेजा, फलाने ने भेजा, हम उस समय मिले थे तो इसलिए मेरा काम कर दो। तो हम एक अलग सा ये माहौल बना लेते हैं, एक स्वार्थ वाला, जिसको कहते हैं चापलूसी वाला, और दुनिया भर की अपनी पहचान हम बताना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इस दोहे में भी हम कुछ इसी तरह की बात को देखने वाले हैं। बिहारी सत्संग से लिया गया ये दोहा, जिसमें बिहारी भगवान कृष्ण को कहते हैं, प्रकट भये द्विज राजकुल, कि देखो हम दोनों, यानी भगवान कृष्ण तुम भी और मैं बिहारी, हम दोनों ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। ठीक है, तुम चंद्रवंशी हो और मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, यानी हम दोनों ही चंद्रवंशी, दोनों ही ब्राह्मण कुल के हैं। सुबह से बसे ब्रज आई, और हम अपनी इच्छा से बस के ब्रज में बसने के लिए आए थे, यानी हम दोनों ही ब्रज के निवासी हैं। और तुम केशव कहलाते हो और मैं केशव का पिता कहलाता हूँ, क्योंकि केशव राय मेरे पिता का नाम था। तो देखा जाए हमारे भीतर सारी समानताएं हैं, तो इन समानताओं के होने के कारण तो तुम्हें मेरे जीवन में आए हुए सभी कष्टों को, सभी कलेशों को, सभी दुखों को, सभी कठिनाइयों को दूर कर देना चाहिए, है ना। भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते करते स्वार्थी हो गया है और अपने मतलब की बात करनी शुरू कर दी इसने, पर इतना मतलब तो बनता ही है। तो देखा कितना सुंदर वर्णन भगवान कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़कर बिहारी ने किया है। अब अगले दोहे पर चलते हैं। अगला दोहा है, जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। प्रस्तुत दोहे में बाह्य आडंबरों का खंडन करते हुए बिहारी ने कहा है, खंडन करते हुए यानी उन पर चोट करते हुए, बाह्य आडंबर यानी दिखावा, जैसे हम मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, घंटी बजाते हैं, ज्योत जलाते हैं, इन सब चीज़ों का खंडन करते हुए बिहारी ने इस दोहे का की रचना की है, और इस दोहे में कितने सुंदर तरीके से उसने सारी बातों को सामने रख दिया है। यदि हम इसमें मन कांचे शब्द को ध्यान से देखें तो इसमें हमें रूपक अलंकार दिखाई देगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको अलंकार इसमें साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैं अलंकार आपको करवा चुकी हूँ, तो आपको पहचान आ रही है, समझ में आ रहा है, तभी आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इनके अर्थ देख लेते हैं। जप माला, माला जपना, छापे, छापे हुए कपड़े पहनना, आपने देखा होगा राम नाम की चादर बहुत सारे लोग पहनते हैं, चादर के ऊपर लिखा होता है राम राम, ओम ओम, राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे बहुत सारे आपको आडंबर मिलेंगे। सरे, पूरा होना, मन कांचे, मन रूपी कंचा, कंचा देखा ना आपने, जो कांच का होता है छोटा सा, जिसे बच्चे पहले गोलियां खेलते थे, तो मन कांचे, मन रूपी कंचा, नाचे, नाचना, वृथा, बेकार में, सांचे, सच्ची भक्ति वाला, रांचे, प्रसन्न होना, और राम भगवान के लिए आया। यहाँ पे राम अयोध्या पुरुष राम नहीं है, केवल ईश्वर है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अर्थ देखते हैं, बिहारी कहते हैं कि माला को जपने से, छपे हुए कपड़े पहनने से, तिलक लगाने से तुम्हारा एक भी काम पूरा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक कमरे में बैठ जाओगे, तिलक लगाओगे, छपे हुए कपड़े पहनोगे और बाहर दुनिया भर के अपराध करते घूमोगे तो तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, नहीं, तुम्हारा कोई काम पूरा नहीं होगा। जब तक तुम्हारा ये मन रूपी कंचा बेकार में ही संसार के मोह माया के जाल में इधर उधर भटकता रहेगा, नाचता रहेगा, तब तक तुम्हें सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक तुम ईश्वर के सच्चे भक्त नहीं बन सकते, तब तक तुम्हारा ईश्वर तुमसे खुश नहीं हो सकता। ईश्वर केवल उन्हीं के ऊपर खुश होता है जो लोग सच्चे अर्थों में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जाति का कल्याण करते हुए अपना भी कल्याण करते हैं। ठीक है, कितने सुंदर तरीके से बिहारी ने अपनी इन दोहों में भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करने के साथ साथ नीति की बात भी आप लोगों के साथ की है। तो आज के लिए बस आज इतना ही। अगली कक्षा में अगले विषय के साथ अगली बात करेंगे। तब तक के लिए मंजू गुप्ता को विराम। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं मंजू गुप्ता आज आपके साथ परछाई चैनल में एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ बिहारी के दोहे कक्षा 10वीं के लिए। कृपया ध्यान से सुने। बिहारी, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि बिहारी अर्थात भगवान कृष्ण है। वृंदावन के रसिया को कौन भूल सकता है। उन्हीं के नाम पर आधारित इनका नाम भी बिहारी रखा गया है। इनके बारे में कहा जाता है, मांझी पोंछी चमकाई युत प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख रची सत्सई एक। अर्थात मांझ कर पोंछ कर चमका कर अनेक प्रयास करने के बाद एक ऐसी प्रतिभा सामने आई है, लंबा जीवन अनेक सुख वाले बिहारी ने एक ग्रंथ बिहारी सत्सई की रचना की। सत्सई अर्थात जिसमें 700 दोहे हों। यदि इसके अंदर हम समास की दृष्टि से देखें तो इसमें हमें द्विगु समास भी दिखाई देता है। 700 दोहों का समूह। बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है, सत्सैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अच्छा अर्थात सत्सई के दोहे ऐसे हैं जैसे किसी मधुमक्खी का डंक हो। देखने में जितने छोटे लगते हैं उनका घाव उतना गहरा उतना चोटीला होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इनका नाम बिहारी अर्थात कृष्ण के नाम पर ही आधारित है। कृष्ण ब्रज भाषा से संबंधित थे, ब्रज के ही थे। बिहारी की भाषा भी ब्रज की है, इसलिए इनकी भाषा को ब्रज भाषा कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म भी ब्रज में ही हुआ था। इनके दोहे श्रृंगार रस से संबंधित हैं। श्रृंगार रस में भक्ति भी है, नीति भी है, प्रेम भी है और श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का वर्णन भी है। रीतिकाल के मुख्य कवियों में से एक कवि हैं बिहारी। तो चलिए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चों इनके अर्थ को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप परियो प्रभात। अर्थ लिख लीजिए पहले। सोहत अच्छा लगना, ओढ़े ओढ़कर, पीतु पीला, पटु कपड़ा, गात शरीर, नीलमणि नीलमणि पर्वत, आतपू धूप या सूर्य के लिए भी कह सकते हैं, बाल सूर्य जो अभी अभी उगा हो यानी उषाकाल का समय, प्रभात सुबह, ठीक है। इस दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का सांवला शरीर है और उस सांवले शरीर पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर अभी अभी बाल सूर्य उदय हुआ हो। उनकी इस सुंदरता का वर्णन किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ उसका अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए बिहारी ने कहा है कि भगवान कृष्ण का सांवला शरीर है और इस सांवले शरीर पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। पीले वस्त्र धारण करने के कारण वे ऐसा लगता है मानो अभी अभी नीलमणि पर्वत पर बाल सूर्य उदय हुआ हो और उसकी किरणें उस पर्वत पर बिखर गई हों। उनकी सुंदरता का वर्णन इस दोहे में किया गया है। बच्चों, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात में आपको उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिखेगा, जहाँ पर आपको मनो मानो मानहू जनु जानो जानहू जैसे शब्द मिलेंगे, वहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे दोहे पर चलते हैं। हमारा दूसरा दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। सबसे पहले हम इनके अर्थ लिख लेते हैं। अहि सांप, एकत इकट्ठे, बसत रहते हैं, मृग हिरण, तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, दीरग दाग भयंकर गर्मी, निदाग ग्रीष्म ऋतु। ये सभी दोहे उनकी भी सच्चाई से लिए गए हैं। इस दोहे में ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता का वर्णन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि सारे जानवर, कौन कौन से जानवर, मोर सांप हिरण और शेर, हिरण शेर का शिकार होता है, शेर हिरण को खा जाता है, सांप मोर को खा जाता है, सॉरी